जरा एक ऐसी स्थिति के बारे में सोचिए, मतलब मान लीजिए एक इंसान अपनी जिंदगी में सब कुछ खो देता है, उसकी सारी दौलत, उसका स्वास्थ्य और यहाँ तक कि उसके सारे बच्चे भी मारे जाते हैं।
हाँ, एक बहुत ही भयानक और अकल्पनीय स्थिति।
बिल्कुल, और उस असीम दर्द में वो इंसान आसमान की तरफ मुठ्ठियां तानकर ब्रह्मांड से, खुद ईश्वर से चीख चीख कर सवाल करता है। वो उन पर अन्याय का सीधा आरोप लगाता है।
हाँ, वो पूरी तरह से टूट चुका है और विद्रोही हो गया है।
सही कहा। लेकिन दूसरी तरफ उसके कुछ बहुत ही समझदार दोस्त आते हैं। वे ब्रह्मांड के नियमों की वकालत करते हैं, ईश्वर का बचाव करते हैं और बड़ी ही विनम्रता से उस इंसान को समझाते हैं कि देखिए, ईश्वर जो भी करते हैं एकदम सही करते हैं,
जो कि एक बहुत ही आम धार्मिक प्रतिक्रिया है ना?
बिल्कुल है। अब अगर हम इस कहानी को देखें तो अंत में क्या होना चाहिए? हमारी सामान्य समझ तो यही कहती है कि ईश्वर उन संस्कारी और विनम्र दोस्तों को शाबाशी देंगे और उस क्रोधित विद्रोही इंसान को कोई बड़ा दंड मिलेगा।
तार्किक रूप से तो यही होना चाहिए,
लेकिन होता है इसका बिल्कुल उल्टा है। ब्रह्मांड की शक्तियां उन संस्कारी दोस्तों को फटकार लगाती हैं और उस क्रोधित इंसान को सही ठहराती हैं। मतलब ये बात किसी के भी गले आसानी से नहीं उतरती।
अरे, और यही वो असहज करने वाला बिंदु है जो हमें आज के इस अध्ययन की ओर ले जाता है। आज की हमारी इस गहरी चर्चा का विषय डॉक्टर जॉन वॉल्टन का शोध है।
हाँ, जो कि बहुत ही दिलचस्प है।
बिल्कुल, डॉक्टर वॉल्टन ने बुक ऑफ जॉब के सत्र 23, विशेष रूप से अध्याय 42 के उपसंहार का जो विश्लेषण किया है, वो इस पूरी कहानी को देखने का नजरिया ही बदल देता है।
सच में, मैंने जब इसे पढ़ा तो मैं भी हैरान रह गई थी,
क्योंकि हम अक्सर मानते हैं कि कहानी का जो अंत है, जहां जॉब को उसकी खोई हुई सारी चीजें वापस मिल जाती हैं, वो एक क्लासिक हैप्पी एंडिंग है।
हाँ, मतलब बचपन से हमें यही लगता है कि यही इस पूरी किताब का मुख्य संदेश है कि अंत में सब ठीक हो जाता है, ऑल इज वेल टाइप का कुछ।
लेकिन वॉल्टन यहाँ एकदम स्पष्ट करते हैं कि यह उपसंहार असल में निष्कर्ष है ही नहीं।
एक मिनट, ये एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है, क्योंकि हम यही सुनते आए हैं कि किसी भी कहानी का निचोड़ तो उसके अंत में ही होता है। अगर ये उपसंहार मुख्य संदेश नहीं है तो फिर ये वहां मौजूद ही क्यों है?
क्योंकि मुख्य संदेश तो पहले ही आ चुका है, जब ईश्वर बवंडर के बीच से जॉब को जवाब देते हैं। वही किताब का चरम बिंदु है।
अच्छा, तो फिर इस आखिरी हिस्से का काम क्या है?
वॉल्टन के अनुसार यह उपसंहार केवल कहानी के 1900 को समेटने का काम कर रहा है जो अधूरे रह गए थे।
जैसे किसी फिल्म के अंत में बताते हैं कि बाकी किरदारों का क्या हुआ।
एकदम सही। जब कोई बड़ी घटना खत्म होती है तो उसके बाद कुछ तार्किक सवालों के जवाब देने होते हैं। यह उपसंहार बस वही तार्किक समापन है। इसका उद्देश्य कोई नया संदेश देना नहीं है, बल्कि बस जो किरदार छूट गए थे उनका हिसाब किताब पूरा करना है।
किरदारों के हिसाब किताब की बात करें तो मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल जॉब के उन 3 दोस्तों का आता है, एलिफाज और उसके 2 साथी।
हाँ, उनका मामला बहुत दिलचस्प है।
स्रोतों में ये एकदम साफ है कि ईश्वर उन तीनों पर बहुत क्रोधित होते हैं। उन्हें बाकायदा आदेश दिया जाता है कि वो 7 बैल और 7 मेढ़े लेकर आएं, उनका बलिदान करें और जॉब से कहें कि वो उनके लिए प्रार्थना करे।
एक बहुत ही सख्त सजा।
लेकिन यहाँ एक और व्यक्ति था ना, एलीहू,
जो लगातार बोल रहा था।
उसे तो पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया, उसे कोई दंड नहीं मिला। ये भेदभाव क्यों?
देखिए, एलीहू को नजरअंदाज करना कोई भूल नहीं है। डॉक्टर वॉल्टन के अध्ययन के अनुसार एलीहू ने अपनी बातों में ईश्वर की बुद्धिमत्ता और न्याय के बारे में जो दलीलें दी थी, वे सैद्धांतिक रूप से सही थी।
ओहो, मतलब थ्योरी के हिसाब से वो पास हो गया।
बिल्कुल, इसलिए वो इस दंड की प्रक्रिया से बाहर रहता है। लेकिन एलिफाज और अन्य 2 दोस्तों का मामला एकदम अलग है। और पता है, यहीं पर पूरी कहानी का सबसे बड़ा भाषाई और अनुवाद का रहस्य छिपा है।
हाँ, मैंने भी उस अनुवाद वाली समस्या पर बहुत सोचा। वो मुझे पढ़ते वक्त बहुत उलझा रही थी।
अगर हम इस रहस्य को नहीं समझते तो पूरी किताब का अर्थ ही उलट जाता है।
तो मैं सीधे उसी पर आती हूँ। NIV अनुवाद में साफ साफ लिखा है कि ईश्वर एलिफाज से कहते हैं, तुमने मेरे बारे में सच नहीं कहा जैसा कि मेरे सेवक जॉब ने कहा है। अब ये बात मुझे बिल्कुल हजम नहीं हो रही है। मेरे दिमाग में तो ये एक ऐसे छात्र की तरह आ रहा है जिसने पूरे साल क्लास बंक की हो, हर टेस्ट में उल्टे सीधे जवाब लिखे हो।
हाँ, एकदम जॉब की तरह।
हाँ, और फिर फाइनल एग्जाम में किसी एक सवाल का सही जवाब देकर टॉप कर लिया हो। मतलब जॉब तो पूरी किताब में शिकायत कर रहा था, ईश्वर की नीतियों पर सवाल उठा रहा था। तो फिर ईश्वर ये कैसे कह सकते हैं कि जॉब ने उनके बारे में सही कहा और दोस्तों ने गलत?
आपकी ये उलझन पूरी तरह जायज है और ये सिर्फ अनुवाद की एक छोटी सी सीमा के कारण पैदा होती है। डॉक्टर वॉल्टन हमें समझाते हैं कि असली खेल प्राचीन हिब्रू भाषा के व्याकरण का है।
व्याकरण का? वो कैसे?
जिस शब्द का अनुवाद सच किया गया है वो हिब्रू शब्द है निकोना।
निकोना, इसका अर्थ क्या होता है?
इसका अर्थ कोई साधारण तथ्यात्मक सत्य नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो तार्किक हो, जिसे परखा जा सके, लेकिन असली अर्थ बदलता है इसके साथ जुड़े पुरुसर्ग यानी प्रपोजिशन से।
अच्छा, तो अनुवादकों ने क्या गलती की?
उन्होंने इसे ईश्वर के बारे में बात करने के रूप में अनुवादित किया है, जैसे कोई पीठ पूछे किसी की चर्चा कर रहा हूँ।
तो अगर ये बारे में नहीं है तो फिर इसका सही अर्थ क्या होना चाहिए?
पुराने नियम के बाकी हिस्सों में जब भी इस विशेष क्रिया और पुरुसर्ग का एक साथ इस्तेमाल होता है तो उसका अर्थ किसी के बारे में दूर से बात करना नहीं होता।
तो क्या होता है?
उसका सीधा सा अर्थ होता है आमने सामने उपस्थित होकर सीधे उस व्यक्ति से बात करना।
ओहो, सीधे बात करना।
इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी में कुछ कर्मचारी बॉस की नीतियों से नाखुश हैं। तीन दोस्त कैंटीन में बैठकर बॉस की नीतियों के बारे में बहुत ही सलीके से चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बॉस जो भी करता है सही करता है।
हाँ, ये तो वो तीन दोस्त हो गए।
बिल्कुल, लेकिन एक चौथा कर्मचारी है जो इतना आहत है कि वो सीधा बॉस के कैबिन का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है, टेबल पर हाथ मारता है और सीधे बॉस से सवाल करता है।
अरे वाह।
तो इसका अर्थ ये हुआ कि ईश्वर ये नहीं कह रहे कि दोस्तों की थियोलॉजी है या उनके सिद्धांत गलत थे, वे ये कह रहे हैं कि दोस्तों ने कभी सीधे ईश्वर से संवाद स्थापित करने की हिम्मत ही नहीं की।
एकदम सही।
और वॉल्टन की रिसर्च यहीं पर सबसे गहरा प्रहार करती है। ईश्वर जॉब द्वारा पूरी किताब में कही गई हर बात पर मोहर नहीं लगा रहे हैं।
हाँ, क्योंकि जॉब ने अपनी पीड़ा में कई गलत और कड़वी बातें भी तो कही थी।
बिल्कुल कही थी। ईश्वर केवल अध्याय 42 की शुरुआती 6 आयतों की बात कर रहे हैं,
जहाँ जॉब ने पश्चाताप किया था।
जब ईश्वर अंततः सामने आए तो दोस्तों ने खामोशी साध ली, वे छिप गए, लेकिन जॉब ने ईश्वर की उपस्थिति का सामना किया। उसने अपनी समझ की कमी को स्वीकार करते हुए सीधे संवाद किया।
हाँ, मतलब जॉब को सिर्फ उस सीधे संवाद और उस पश्चाताप के लिए सही ठहराया गया है।
हाँ, ईश्वर को वो खुरदुरा क्रोधित लेकिन सच्चा संवाद पसंद है, बजाय उन खोखले सिद्धांतों के जो सिर्फ दूर से बोले जाते हैं।
ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि एक कड़वा और सीधा संवाद एक मीठी लेकिन दूर की वकालत से बेहतर है। लेकिन पता है, यहाँ से कहानी एक ऐसे मोड़ पर जाती है जो मुझे और भी ज्यादा परेशान करता है।
अच्छा, कौन सा मोड़?
चलिए, मान लिया कि जॉब का पश्चाताप सही था और उसे माफ कर दिया गया, लेकिन उसके बाद उसे जो कुछ मिलता है, मतलब उसकी संपत्ति दोगुनी हो जाती है, उसे नए बच्चे मिल जाते हैं।
हाँ, वो उपसंहार का आखिरी हिस्सा।
जब कोई इंसान इसे पढ़ता है तो ये बहुत ही खोखला महसूस होता है।
खोखला कैसे?
आप खुद सोचिए, अगर किसी माता पिता ने अपने बच्चों को खोया है तो नए बच्चे पैदा होने से पुराने बच्चों की मौत का दर्द तो खत्म नहीं हो जाता ना?
बिल्कुल नहीं होता।
तो ये एक बहुत ही क्रूर तरह का हैप्पी एंडिंग लगता है।
मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। अगर हम इसे एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में पढ़ें, जहाँ हम एक वास्तविक पिता के शोक को देख रहे हों, तो ये अंत वाकई में असंवेदनशील लगेगा।
हाँ, बिल्कुल लगता है।
लेकिन डॉक्टर वॉल्टन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण पेश करते हैं। उनका शोध हमें बताता है कि प्राचीन साहित्यों में और विशेष रूप से जॉब की किताब में हमें इसे एक वैचारिक प्रयोग या कह लीजिए थॉट एक्सपेरिमेंट के रूप में देखना चाहिए।
एक वैचारिक प्रयोग मतलब हम जॉब के व्यक्तिगत दर्द पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय ये देखें कि इसके जरिए कौन सा बड़ा सिद्धांत परखा जा रहा है।
जी हाँ, पूरी किताब का मुख्य उद्देश्य जॉब की व्यक्तिगत पीड़ा का समाधान खोजना नहीं है, बल्कि ईश्वर की नीतियों का परीक्षण करना है।
अच्छा, तो ये किसी कोर्टरूम ड्रामा जैसा है?
बिल्कुल वैसा ही। कहानी की शुरुआत में याद कीजिए, एक चैलेंजर आता है।
हाँ, वो जो ईश्वर को चुनौती देता है।
सही कहा। उसका दावा है कि अगर ईश्वर अच्छे लोगों को इनाम देंगे तो लोग सिर्फ लालच में अच्छे बनेंगे। इस तरह से कोई भी इंसान सच में अच्छा नहीं होगा, सब सिर्फ व्यापारी बन जाएंगे।
मतलब चैलेंजर के अनुसार अच्छे को इनाम देना एक खराब नीति है।
हाँ, और दूसरी ओर जब जॉब दुखी होता है तो वो दावा करता है कि अच्छे लोगों को दुख देना ईश्वर की एक अन्यायपूर्ण नीति है।
तो ईश्वर की नीतियों पर मुकदमा चल रहा है। और पहले 27 अध्यायों में चैलेंजर का दावा तो पूरी तरह खारिज हो जाता है ना?
बिल्कुल। जॉब ये साबित कर देता है कि एक इंसान बिना किसी फायदे या इनाम के भी ईश्वर के प्रति वफादार रह सकता है। वो अपना सब कुछ खोने के बाद भी अपनी निष्ठा नहीं छोड़ता।
लेकिन यहीं पर बात बहुत ही रोचक हो जाती है।
वो कैसे?
देखिए, अगर जॉब ने ये साबित कर ही दिया है और पूरी किताब ये स्थापित कर रही है कि कर्म फल का सिद्धांत यानी अच्छे काम का अच्छा इनाम मिलेगा, यह हमेशा काम नहीं करता।
सही है।
तो फिर उपसंहार में जॉब को सब कुछ वापस क्यों दिया जा रहा है? अगर ईश्वर ने साबित कर दिया कि वे किसी नियम से बंधे नहीं हैं, तो अंत में जॉब को अमीर बनाकर क्या ईश्वर खुद अपने ही बनाए नियम को नहीं तोड़ रहे?
ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है।
क्या ये उसी अच्छे काम के इनाम वाले नियम को पिछले दरवाजे से वापस लाना नहीं हो गया?
ये इस पूरे विषय का सबसे ज्वलंत प्रश्न है। अगर सतही तौर पर देखें तो ऐसा ही लगता है कि ईश्वर हार मानकर वापस उसी पुराने नियम पर लौट आए।
हाँ, मुझे तो बिल्कुल वैसा ही लगा।
लेकिन डॉक्टर वॉल्टन का विश्लेषण बताता है कि ये कदम उस नियम को वापस लाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पूर्ण स्वतंत्रता को स्थापित करने के लिए उठाया गया है।
पूर्ण स्वतंत्रता, वो कैसे साबित हो रही है?
जॉब को समृद्धि वापस देकर ईश्वर पूरे ब्रह्मांड को ये संदेश दे रहे हैं कि उनकी नीतियां चैलेंजर के दावों से प्रभावित नहीं होती।
अच्छा,
चैलेंजर ने कहा था कि समृद्धि देना खराब नीति है। अगर ईश्वर डरकर जॉब को गरीबी छोड़ देते तो इसका मतलब होता कि वे चैलेंजर के आरोप से डर गए।
ओह, मतलब ईश्वर दिखा रहे हैं कि वे किसी के द्वारा चुनौती दिए जाने पर अपना स्वभाव नहीं बदलते।
एकदम सही, वे स्वतंत्र हैं।
लेकिन मैं थोड़ा कड़वा सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन क्या ये सिर्फ शब्दों का जाल नहीं है?
शब्दों का जाल?
हाँ, मतलब आप इसे उपहार कह लें या इनाम, बात तो एक ही है ना। अंत में तो जॉब को सब मिल ही गया, तो क्या वो चैलेंजर वापस आकर ये नहीं कह सकता कि देखिए, मैंने तो कहा ही था, अंत में तो आपने उसे फायदा दे ही दिया, ये तो वही कर्मफल का सिद्धांत हुआ।
ये शब्दों का जाल बिल्कुल नहीं है। इसमें एक बहुत गहरा सैद्धांतिक अंतर है। इनाम और उपहार के बीच का फर्क दायित्व का होता है।
दायित्व का फर्क, थोड़ा और समझाइए।
जब कोई नियम होता है जैसे कर्मफल का सिद्धांत, तो वो ईश्वर पर एक दायित्व डाल देता है। मतलब अगर किसी इंसान ने अच्छा काम किया है तो ईश्वर मजबूर हैं उसे समृद्धि देने के लिए।
हाँ, जैसे ईश्वर उस इंसान के कर्जदार हो गए हों।
बिल्कुल, वॉल्टन स्पष्ट करते हैं कि जॉब को मिली समृद्धि कोई ऐसा कर्ज नहीं थी जिसे चुकाने के लिए ईश्वर बाध्य थे। जॉब ने कोई परीक्षा पास कर ली थी, इसलिए उसे यह नहीं मिला।
तो फिर ये क्या था?
ये पूरी तरह से ईश्वर का स्वतंत्र उपहार है। ये समृद्धि जॉब की किसी महानता को साबित नहीं कर रही, ये महज ईश्वर के उदार स्वभाव को साबित कर रही है।
इसका मतलब है कि हम इंसानों ने सदियों से दुनिया को समझने के लिए जो एक ढांचा बनाया हुआ था, ये कहानी उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर देती है।
हाँ, पूरी तरह से। स्रोतों में वॉल्टन ने इसे न्याय का त्रिकोण या जस्टिस ट्रायंगल कहा है। ये त्रिकोण वाली बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी।
ये त्रिकोण इंसानी सोच की सबसे बड़ी कमजोरी को दर्शाता है। इंसान ये मानकर चलता है कि दुनिया तीन चीजों पर टिकी है। वो तीन चीजें क्या हैं?
पहला, कर्म फल का सिद्धांत, जिसका मतलब है कि अच्छे के साथ हमेशा अच्छा और बुरे के साथ हमेशा बुरा होगा।
ठीक है, ये तो हम सब मानते हैं।
दूसरा, जॉब की धार्मिकता, कि वो वाकई में एक निष्कलंक और अच्छा इंसान है। और तीसरा, ईश्वर का न्याय, कि ईश्वर हमेशा निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से काम करते हैं।
और जब जॉब पर विपत्ति आती है तो ये तीनों चीजें एक साथ सच नहीं हो सकती।
बिल्कुल नहीं हो सकती।
हाँ, क्योंकि अगर जॉब अच्छा है और ईश्वर न्यायपूर्ण है तो उस पर दुख नहीं आना चाहिए था। और अगर दुख आया है तो या तो जॉब अंदर से बहुत बुरा इंसान है या फिर ईश्वर न्याय करना भूल गए हैं।
और यही वजह है कि उसके दोस्त बार बार कहते हैं कि जॉब ने जरूर कोई पाप किया होगा। वे असल में उस त्रिकोण को टूटने से बचाना चाहते थे।
वे अपने बनाए सिस्टम को बचा रहे थे।
हाँ, और ईश्वर आते हैं और उस पूरे त्रिकोण को ही उठाकर फेंक देते हैं। वे कहते हैं कि तुमने ब्रह्मांड का आधार ही गलत मान लिया है। ब्रह्मांड का आधार न्याय है ही नहीं।
बाप रे, ये बात तो किसी को भी डरा सकती है।
डरा तो सकती है।
मतलब अगर ब्रह्मांड न्याय पर नहीं चल रहा है तो फिर क्या ये महज एक अंधी व्यवस्था है? जब हम अपने आसपास किसी बहुत अच्छे इंसान के साथ कुछ बहुत ही अच्छा होते हुए देखते हैं तो वो क्या है? क्या वो महज एक इत्तेफाक है? अगर कर्म फल का कोई नियम नहीं है तो क्या सब कुछ बस यूं ही बेतरतीब तरीके से हो रहा है, रैंडमली?
ये डर स्वाभाविक है, लेकिन डॉक्टर वॉल्टन समझाते हैं कि न्याय का ना होना ब्रह्मांड के बेतरतीब होने का प्रमाण नहीं है। ब्रह्मांड का आधार न्याय नहीं बल्कि असीम बुद्धिमत्ता है, विजडम।
बुद्धिमत्ता? तो जब कोई अच्छा काम करता है और उसे इनाम मिलता है तो वो क्या है?
जब हमें दुनिया में कहीं कर्मफल का सिद्धांत काम करता हुआ दिखाई देता है, यानी जब किसी अच्छे इंसान को सफलता मिलती है, तो वो कोई इत्तेफाक नहीं होता।
तो वो क्या होता है?
वे असल में ईश्वर के चरित्र और उनकी बुद्धिमत्ता के रिपल इफेक्ट्स होते हैं, यानी तरंगों के प्रभाव। ईश्वर स्वभाव से ऐसे हैं कि वे वफादार लोगों पर अनुग्रह करना पसंद करते हैं, उन्हें इसमें आनंद आता है।
लेकिन ये कोई पक्की गारंटी तो नहीं है, है ना?
बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है। दुनिया इस आधार पर काम करने के लिए बाध्य नहीं है। हम ब्रह्मांड को किसी वेंडिंग मशीन की तरह नहीं देख सकते।
वेंडिंग मशीन?
हाँ, जहाँ कोई इंसान अपने अच्छे कर्मों का सिक्का मशीन में डाले, बटन दबाए और नीचे से सुख, शांति और समृद्धि का पैकेट बाहर निकल आए।
बहुत ही सटीक उदाहरण है ये।
असीम बुद्धिमत्ता का मतलब है कि ईश्वर एक ऐसी विशाल तस्वीर देख रहे हैं जो हमारी समझ से परे है। कभी कभी उस बुद्धिमत्ता की मांग होती है कि किसी भले इंसान को भी पीड़ा से गुजरना पड़े।
ये बात उस भारीपन को समझाती है जो जोब की किताब पढ़ते हुए महसूस होती है।
सही कहा।
क्योंकि इस पूरे कहानी में इतने लंबे संघर्ष और संवाद के बाद भी जोब को कभी स्पष्टीकरण नहीं मिलता कि उसे इतनी पीड़ा क्यों सहनी पड़ी।
कभी नहीं मिलता।
और सबसे बड़ी बात, ये किताब पाठकों को भी वो स्पष्टीकरण नहीं देती। हमें भी नहीं बताया जाता कि देखिए ये सब इसलिए हुआ था ताकि ये बड़ा मकसद पूरा हो सके।
और शायद यही इस किताब की सबसे बड़ी खूबी है और हमारा सबसे बड़ा सबक भी।
वो कैसे?
इंसानी फितरत हमेशा कारणों की तलाश में रहती है। हम चाहते हैं कि हर दुख, हर नुकसान के पीछे का कारण हमें स्पष्ट रूप से एक पर्ची पर लिख कर दे दिया जाए।
हाँ, ताकि हमें तसल्ली मिल सके।
लेकिन जॉब की किताब हमें ये सिखाने के लिए नहीं लिखी गई है कि दुखों का कारण क्या है। डॉक्टर वॉल्टन जोर देकर कहते हैं कि हमें जॉब के व्यवहार की नकल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
मतलब हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम भी जॉब की तरह करेंगे तो सब मिल जाएगा।
बिल्कुल नहीं। ये किताब ये नहीं सिखाती कि अगर आज तुम चुपचाप दुख सहलोगे तो कल ईश्वर तुम्हें सब कुछ दो गुना वापस दे देंगे। ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है।
तो फिर अगर ये हमें दुखों का कारण नहीं बताती और ये भी नहीं सिखाती कि मुसीबत के समय हमें क्या करना चाहिए, तो इस पूरी किताब और इस जटिल उपसंहार का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि हम ईश्वर की नीतियों के बारे में सही, सटीक और गहराई से सोचना सीखें। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पीड़ा अपरिहार्य है, ये आनी ही है। जब वो दुख आता है तो हम इंसानों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है न्याय के उस पुराने त्रिकोण को खोजना। हम हिसाब लगाने बैठ जाते हैं।
हम सोचते हैं कि हमने ऐसा क्या किया जो हमारे साथ ये हो रहा है।
हाँ, और जब वो त्रिकोण काम नहीं करता, जब हमारे अच्छे कर्मों के बदले हमें दुख मिलता है, तो हम अपनी उसी मूर्खतापूर्ण सोच के कारण ईश्वर से दूर हो जाते हैं। जॉब की किताब हमें उस मूर्खतापूर्ण सोच से बचाती है।
यह हमें उस समय ईश्वर को नकारने से रोकती है जब हमें वास्तव में उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है।
एकदम सटीक।
क्या अद्भुत दृष्टिकोण है। इस पूरी गहरी चर्चा ने कहानी के अंत को देखने का हमारा नजरिया ही पलट दिया है।
मुझे भी यही लगता है।
हमने देखा कि कैसे जॉब की कहानी का अंतिम हिस्सा कोई साधारण हैप्पी एंडिंग नहीं है। हमने अनुवाद के उस गहरे रहस्य को भी समझा जहां ईश्वर के बारे में सुरक्षित दूरी से बात करने से ज्यादा मूल्यवान अपने दर्द के साथ सीधे ईश्वर का सामना करना है।
हाँ, वो सीधा और सच्चा संवाद।
हमने उस वैचारिक प्रयोग पर चर्चा की जिसने यह साबित किया कि ईश्वर किसी इंसानी नियम या कर्म फल के सिद्धांत से बंधे नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने ये जाना कि ब्रह्मांड मानव निर्मित न्याय के त्रिकोण पर नहीं बल्कि एक असीम अकल्पनीय बुद्धिमत्ता पर टिका है।
ये एक ऐसा नजरिया है जो हमारी उस आरामदायक सोच को चकनाचूर कर देता है कि हम अच्छे रहेंगे तो दुनिया हमारे साथ अच्छी रहेगी।
और ये चकनाचूर होना जरूरी भी है।
बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि वो आरामदायक सोच हमें झूठी सुरक्षा तो देती है, लेकिन वो वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता कहीं ज्यादा विशाल और जटिल है, जो हमारे छोटे से न्याय के तराजू से नहीं बल्कि एक ऐसी बुद्धिमत्ता से संचालित है जिसे हम पूरी तरह से कभी नहीं नाप सकते।
और इसी शक्तिशाली विचार के साथ हम आज के इस गहरे अध्ययन के अंत में आ गए हैं। लेकिन मैं इस चर्चा को एक ऐसे सवाल पर छोड़ना चाहूंगी जो शायद आपको कई दिनों तक सोचने पर मजबूर कर दे।
बताइए।
अगर ब्रह्मांड की नींव न्याय के बजाय असीम बुद्धिमत्ता पर टिकी है और हमें हमारे दुखों का क्यों कभी नहीं बताया जाता, तो क्या सच्ची आस्था असल में वही है जहां हम जवाबों की मांग करना छोड़ देते हैं?
बहुत ही गहरा सवाल है।
उस समीकरण से बाहर निकलकर जहां हम मानते थे कि हमारे अच्छे कर्मों के बदले दुनिया हमें सुख देने के लिए मजबूर है, क्या हम बिना किसी स्पष्टीकरण और बिना किसी गारंटी के भी उस असीम बुद्धिमत्ता पर भरोसा करने का साहस जुटा सकते हैं? सोचिएगा जरूर।